सभा उपदेशक अध्याय छे, अध्याय छे पद एक और दो। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वो मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं चाहता, जो कुछ उसने चाहा उसके पास है। सभा उपदेशक अध्याय छे पद दो में आगे लिखा है, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता और दूसरा ही उसे खाता है। ये व्यर्थ और भयानक दुख है। मनुष्य के पास सब कुछ है परंतु उसमें खाने नहीं पाता। सभा उपदेशक अध्याय छे पद तीन। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वो बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। एक लंबी जिंदगी जीकर 100 बच्चे उत्पन्न करने के बजाय इस व्यक्ति के लिए भला होता कि वो पहले ही कूच कर जाता। सभा उपदेशक अध्याय 6 पद 4 से लेकर 7 तक। क्योंकि वो व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया और ना सूर्य को देखा ना किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हां, चाहे वो 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने ना पाए तो उसे क्या? क्या सबके सब एक ही स्थान में नहीं जाते? मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। जो कुछ आप करते हैं अपने आप को भोजन खिलाने के लिए करते हैं लेकिन फिर भी भूखे रहते हैं। सारा काम आप अपने पेट के लिए करते हैं तो भी पेट भरता नहीं। सभा उपदेशक अध्याय 6 पद 8 से लेकर 10 तक। जो बुद्धिमान है वो मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और कंगाल जो ये जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए वो भी इससे किस बात में बढ़कर है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, ये भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, नया कुछ नहीं। सभा उपदेशक अध्याय 6 पद 10 में आगे लिखा है, और ये प्रकट है कि वो आदमी है कि वो उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता है। बहुत से लोगों को हम परमेश्वर का विरोध करते हुए देखते हैं। नबी कहता है यशया 45:9 पद, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। तो भी लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं। हमारा परमेश्वर से झगड़ना अधिकतर दुखदायी फल देता है, जहां हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों आया। क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाता कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, मैं परमेश्वर के प्रति कटु हो जाता हूं। आज बहुत लोग हैं जो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, वे परमेश्वर से नाराज है, उनके मन में परमेश्वर के प्रति कड़वाहट है, क्योंकि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार चल रहा है। उनकी समझ में परमेश्वर ने उन्हें वो सब कुछ नहीं दिया जो वे चाहते थे या पसंद करते थे, या परमेश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों होने दिया। ये दुखदायी लगता है। मैं समझता हूं कि परमेश्वर को हमारे जीवन में भली चीजें ही आने देनी चाहिए, उसे मुझे हर समय स्वस्थ रखना चाहिए, कभी बीमार ना पड़ूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर को मुझे समृद्ध मनुष्य बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता तो मैं परमेश्वर को दोष देता हूं। परमेश्वर, तूने मुझे क्यों बदसूरत बनाया? मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? क्यों? मैं परमेश्वर को दोष देता और गलतियां निकालता हूं, क्योंकि जिस रीति से मैं जीना चाहता था उसने वैसा नहीं किया। इस तरह मनुष्य परमेश्वर का विरोध करता है। सभा उपदेशक अध्याय 6:12। कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? कौन जानता है कि क्या अच्छा है, धनी होना या निर्धन होना? आप जानते हैं आपके लिए उत्तम क्या है? अब आप सोचेंगे धनी होना उत्तम है, परंतु क्या ऐसा है? यदि आप धनी हो तो क्या धन आपके हृदय और मन को परमेश्वर से अलग करेगा? क्या आप अपने धन पर भरोसा करने लगेंगे? क्या वो परमेश्वर के प्रति विश्वास और प्यार को कम कर देगा? क्या आप अपनी अभिलाषाओं द्वारा गिरा दिए जाओगे जैसे दूसरे धनी व्यक्ति गिरते हैं? क्या आपका मन परमेश्वर से हटकर धन पर लग जाएगा? कौन जानता है? क्या आप जानते हो कि धन आपके लिए क्या करेगा? आप इसलिए तर्क प्रस्तुत करते हो क्योंकि आप धनी नहीं हैं, आपके पास धन की कमी है। लेकिन परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता हूं। शायद परमेश्वर मुझे निर्धन रखना चाहता है ताकि मैं उसमें विश्वास बनाए रखूं। मैं हर दिन की आवश्यकताओं के लिए उस पर आश्रित रहूं। कौन जानता है मनुष्य के लिए क्या अच्छा है? मेरे लिए क्या अच्छा है, स्वस्थ रहना या बीमार? पौलुस प्रेरित के लिए स्पष्ट रूप से बीमार रहना अच्छा था। जब उसने परमेश्वर से विनती की कि ये दुर्बलता दूर हो जाए, परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 12:9, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं निर्बल रहूं और परमेश्वर पर आश्रित रहूं, ताकि मैं अपने आप पर निर्भर ना रहूं, लेकिन मैं पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित रहना सीखूं और इस प्रकार परमेश्वर की शक्ति जानूं। अथवा ये अच्छा है कि मैं शक्तिशाली अनुभव प्राप्त करूं और आत्मनिर्भर बनूं और फिर मिट जाऊं, क्योंकि मैं सच में बहुत कमजोर हूं जब मैं अपनी देह तथा देह की बातों में आता हूं। मेरे लिए क्या अच्छा है, कौन जानता है? मैं अपने हृदय को भी नहीं जानता, वो तो धोखा और निराशा देने वाला दुष्ट है। परमेश्वर जानता है मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, इसलिए मेरा परमेश्वर से तर्क प्रस्तुत करना गलत है जब वो मेरे विचारों के अनुसार कार्य नहीं करता, जब वो मुझे वे चीजें नहीं देता जिनकी मैं इच्छा करता और सोचता हूं कि ये आवश्यक है, और मैं तर्क प्रस्तुत शुरू करना करता हूं, क्योंकि परमेश्वर, तू जानता है मुझे एक कीमती गाड़ी की आवश्यकता थी, ये ठीक नहीं है, तूने मुझे नहीं दी। ओह, मैं सोचता हूं कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी होती। परमेश्वर जानता है कि ये चीजें मुझे मिटा देगी, ये बातें मुझे घमंड से भर देगी। मैं सोचता हूं मैं भी कुछ हूं, मैं घमंड से भरा आगे बढ़ जाता हूं, तब अचानक ही मेरे साथ दुर्घटना हो जाती है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए उत्तम क्या है, लेकिन प्रभु मुझे वो चाहिए। ओह, मैं परमेश्वर से गुस्सा हूं, मैं प्रभु का विरोध करता हूं, क्योंकि उसने मेरे साथ थोड़ी सी भलाई जो मैं चाहता था नहीं की। मेरे लिए उत्तम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। कोई भी नहीं जानता कि मनुष्य के जीवन के लिए क्या भला है। सभा उपदेशक अध्याय 6:12। क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वो परछाई की नाई बिताता है। हमारा जीवन अल्पकालीन है, हमारे दिन गिने हुए हैं। यीशु से पृथक होकर जीवन व्यतीत करना खाली है। यीशु के अतिरिक्त जीवन अर्थहीन या सार रहित है। वो जो परछाई के समान है, सारा जीवन व्यर्थ है, परछाई की नाई बिताना। सभा उपदेशक अध्याय 6:12 में आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा? कौन जानता है आपके मरने के बाद क्या होगा? कौन जानता है कि क्या आपके साथ जाएगा? कौन जानता है कल का दिन क्या लाएगा? भविष्य में क्या रखा है? इसका आपके जीवन में क्या फल होगा? केवल परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर का विरोध करना छोड़कर अपने आप को परमेश्वर को सौंपना होगा। परमेश्वर सब बातें जानता है, बल्कि लड़ने और झगड़ने से वो मेरे अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। इससे अच्छा तो मुझे अपना जीवन उसके हाथों में देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जानता है मेरे लिए उत्तम क्या है। जो दुख और दर्द मैं आज अनुभव कर रहा हूं, वो मेरी भलाई के लिए है। चाहे वो बीमारी हो या तकलीफ जो मैं आज भोग रहा हूं, परमेश्वर अपनी अनंत योजना पूरी करता है। एक दिन आएगा, इस विपरीत परिस्थितियों के लिए धन्य कहूंगा, ना कि कोसूंगा, जो मैं नकारात्मक परिस्थितियों में अक्सर किया करता हूं। वो दिन आएगा जब आप निराशा के लिए परमेश्वर को धन्य कहेंगे और धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा था, जिसे आप समझ नहीं पाए। भला होगा कि मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूं और कहूं, परमेश्वर ये मेरा जीवन है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर, तू जानता है कि क्या सही है, अपनी सिद्ध योजना के अनुसार मुझ में कार्य कर। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि हम तेरे वचन में चल सके, क्योंकि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, ताकि हम धार्मिकता और सच्चाई के मार्ग में निर्देशन प्राप्त करें और हम तेरी परिपूर्णता में प्रवेश करें। प्रभु, अपना वचन हमारे हृदयों में डाल। जब हम इस सांसारिक जीवन के खालीपन को देखते हैं जो निरार्थक है, हम चाहते हैं कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उस अनंत काल को जिसे आपने हमारे मन में स्थापित किया है, उसे आपके पुत्र में अनुभव करें, क्योंकि यही वो अनंत जीवन है जो तूने हमारे मन में स्थापित किया है। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।